लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे समुद्री तटों पर कठिन परिश्रम करने वाले तथा वहीं पर जीवन यापन करने वाले समस्त नाविकों, मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना से उन्हें समर्थन मिले। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। यहाँ के निवासियों को भरपूर भोजन प्रदान करूंगा, मैं इसके दरिद्रों को रोटी देकर तृप्त करूंगा, मैं इसके याजकों को कल्याण के वस्त्र पहनाऊंगा, इसके भक्तजन उल्लास के गीत गाएंगे, मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूंगा, अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाऊंगा, उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा किंतु उसके मस्तक पर मेरा मुकुट शोभायमान होगा। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 132वें भजन के अंतिम चार पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस भजन में दाऊद के साथ हुई ईश्वर की संधि को रेखांकित किया गया है और सियों को प्रभु द्वारा चुना गया चिरस्थायी निवास घोषित किया गया है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मंजूषा में ईश्वर का विधान निहित है। यह एक वैधानिक दस्तावेज है जिससे विश्व के महान धर्मों को एक अद्वितीय योगदान मिला है। इससे मनुष्यों के प्रति ईश्वर के अनवरत और अचल प्रेम का हमें ज्ञान मिला है। यदि मनुष्य ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों पर चलेंगे तो वे और उनके साथ साथ उनकी संतानें भी ईश्वर के नियमों के मर्म को समझ सकेंगी, क्योंकि अपने साक्ष्यों द्वारा ईश्वर अनवरत इज़राइल पर और युग युगांतर तक के लोगों पर नित्य नवीन प्रकाशना किया करते हैं। इसीलिए याजकों और भक्तों का आह्वान किया जाता है कि वे मंजूषा की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए धार्मिकता के वस्त्र धारण करें और मंजूषा के मिल जाने के लिए ईश्वर की स्तुति में आनंद के गीत गाएं। 132वें भजन के अंतिम चार पदों में सियों के लोगों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई है। ईश्वर स्वयं उनके लिए भोजन, रोटी और वस्त्र का प्रबंध करेंगे और दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करेंगे। वे अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाएंगे जिनके मस्तक पर प्रभु ईश्वर का मुकुट शोभायमान होगा।
ईश्वर, 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 ओम।
ईश्वर, 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 ओम।
ईश्वर ओम। ईश्वर तुम हो जीवन दाता,
ईश्वर तुम हो जीवन दाता,
ईश्वर 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 ओम,
ईश्वर 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 ओम,
ईश्वर 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 ओम,
श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि जिस प्रकार प्रभु येसु मसीह द्वारा सिखाई गई हे हमारे पिता प्रार्थना में भौतिक, शारीरिक और साथ ही आध्यात्मिक तत्व विद्यमान हैं, उसी प्रकार मंदिर के याजक द्वारा कहे गए ईश्वर के शब्दों में भी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तत्व विद्यमान हैं। भोजन, रोटी और वस्त्र हम सभी मनुष्यों की शारीरिक जरूरतें हैं जो प्रभु ईश्वर हमें प्रदान करते हैं, जिसके बदले में भक्तजन उल्लास के गीत गाते हैं। श्रोताओ, स्तोत्र ग्रंथ के 132वें भजन में हम दाऊद और उनके वंशज के लिए प्रभु ईश्वर की योजना के विषय में सुनते हैं। इसका संदर्भ नवीन व्यवस्थान में संत लुकस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में निहित जकरियस के भजन में हमें मिलता है। इस भजन के पहले दो पद इस प्रकार हैं: धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। 132वें भजन के ये शब्द कि मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूंगा, और यह कि अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाऊंगा में प्रदीप शब्द दाऊद के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि दाऊद ने ही अपने सैनिकों में साहस का संचार किया था। इसी प्रकार अपेक्षा की जाती है कि इज़राइल सब राष्ट्रों के लिए प्रदीप बने। नबी ईसाया के ग्रंथ के 49वें अध्याय के 6वें पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने और इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। श्रोताओ, इसी पद का मसीह शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है उद्धार करता। दाऊद की जगह पर मसीह का आगमन होगा, जो मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाएंगे। इस शब्द यानी कि मसीह शब्द का ग्रीक भाषा में पर्याय है ख्रीस्त। अस्तु 132वें भजन के अंतिम पदों में निहित मसीह शब्द प्रभु येसु ख्रीस्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए समुएल के दूसरे ग्रंथ में घोषित किया गया है कि दाऊद का वंश फूलेगा फलेगा और प्रभु ईश्वर का मुकुट उसके मस्तक पर शोभायमान होगा। वस्तुतः श्रोताओ, स्तोत्र ग्रंथ के 132वें भजन में दाऊद के वंश में पैदा होने वाले प्रतिज्ञात मसीह की भविष्यवाणी निहित है। भजनकार का कहना है कि इज़राइल की आशा पापी राजा दाऊद के पुण्य कर्मों पर टिकी हुई नहीं थी, अपितु वह ईश्वर की दुधारी प्रतिज्ञा पर टिकी हुई थी। ईश्वर ने विधान की संहिता के अंतर्गत दाऊद को अपने पुत्र रूप में चुना था और सियों को अपने पायदान के रूप में। प्रभु ईश्वर द्वारा की गई इन्हीं प्रतिज्ञाओं को सियों पर्वत की ओर आरोहित तीर्थ यात्री तथा मंदिर के याजक दोहराते और आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करते हैं। अंततः हम इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि भजनकार यह घोषित करता है कि उक्त सभी बातें तब ही साकार रूप ले सकेंगी जब दाऊद के घराने के लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, और दाऊद के घराने के लोग हैं हम सब। यह इसलिए कि संहिता में ही हम पर यह प्रकट किया गया है कि प्रभु ईश्वर हम मनुष्यों से क्या चाहते हैं। तो राह में प्रकट शब्द ही मनुष्यों का मार्गदर्शक है। इसी में यह प्रकट किया गया है कि ईश्वर और उनकी प्रजा इज़राइल के बीच संबंध नित्य नया होता रहेगा। विधि विवरण ग्रंथ के 5वें अध्याय के प्रथम 2 पदों में हम पढ़ते हैं, मूसा ने सारे इज़राइली समुदाय को एकत्र कर कहा, यही वे नियम और आदेश हैं जिन्हें मैं आज तुम्हारे समक्ष रख रहा हूँ। इन्हें सीखो और सावधानी से इनका पालन करो। प्रभु हमारे ईश्वर ने होरेब पर्वत पर हमारे लिए एक विधान निर्धारित किया है।
ईश्वर तुम हो मुक्ति दाता,
ईश्वर तुम हो मुक्ति दाता,
ईश्वर 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 ओम,
ईश्वर 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 ओम,
ईश्वर 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 ओम,
ईश्वर 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 ओम,
ईश्वर तुम हो शांति
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को रोम स्थित मरियम महागिरजाघर की भेंट कर सालुस पॉपुली रोमानी अर्थात रोम के लोगों की मुक्ति शीर्षक से सुसज्जित मरियम की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना की। बुधवार को मरियम महागिरजाघर के समर्पण का पर्व मनाया गया। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया में 5 अगस्त को मरियम को समर्पित महागिरजाघर के समर्पण की वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। रोमी रीति की धर्म विधि में इसे वैकल्पिक रूप से मनाया जाता है। रोम के मरियम महागिरजाघर के मूल के विषय में कहा जाता है कि सन 358 ईस्वी में 4 और 5 अगस्त के बीच की रात्रि को पवित्र कुंवारी मरियम ने तत्कालीन संत पापा लिबेरियस तथा जॉन नामक एक रोमी देशभक्त को दर्शन देकर उनसे आग्रह किया था कि वे उस स्थल पर एक गिरजाघर का निर्माण करवाएं जो उन्हें दिखाया जाएगा। गौरतलब है कि अगस्त का महीना रोम में बहुत ही गर्म और आर्द्र भरा होता है, किंतु उस साल 5 अगस्त की प्रातः रोम की एस्क्वेलाइन पहाड़ी के शीर्ष के एक हिस्से को बर्फ की श्वेत चादर ने ढक दिया था, जिससे संत पापा लिबेरियस और श्री जॉन को गिरजाघर के जगह का संकेत मिला। सदियों से विशिष्ट अनुष्ठानों के साथ रोम स्थित मरियम महागिरजाघर अथवा लाइबेरियन बेसिलिका के समर्पण का जश्न मनाया जाता है। समर्पण पर्व पर ख्रिस्तिया के दौरान छत का एक हिस्सा खोला जाता है जहां से सफेद चमेली और मोगरे के फूल भक्त मंडली पर बरसाए जाते हैं। इस वर्ष बुधवार 5 अगस्त की प्रातः महागिरजाघर के प्रधान याजक कार्डिनल स्टानिस्लाव रिल्को ने मरियम महागिरजाघर में ख्रिस्तिया अर्पित किया। मध्याह्न रोजरी विनती का पाठ किया गया तथा शाम को सांध्य वंदना और ख्रिस्तत्याग अर्पित किया गया। इस अवसर पर एक बार फिर महागिरजाघर की छत से श्वेत पुष्प बरसाए गए। रोम समय अनुसार दिन के 4:30 बजे संत पापा फ्रांसिस ने मरियम महागिरजाघर की भेंट कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस अवसर पर महागिरजाघर के ओर छोर विश्वासी और प्रशंसक एकत्र हो गए थे। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार 6 अगस्त को प्रभु येसु ख्रीस्त के रूपांतरण महापर्व के उपलक्ष्य में एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर विश्व के कैथोलिक धर्मानुयायियों से आग्रह किया है कि वे ईश्वर पर अपनी दृष्टि लगाए रखें। गुरुवार 6 अगस्त के ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, प्रभु ईश्वर के उज्ज्वल मुखमंडल पर हम अपनी दृष्टि लगाए रखें। इन्हीं ईश्वर पर हम ताबोर पर्वत पर रूपांतरित प्रभु येसु ख्रीस्त में मनन चिंतन करते हैं। वे ही वह ज्योति हैं जो प्रतिदिन की घटनाओं को प्रकाशमान कर प्रज्वलित करती है। हैशटैग प्रभु का रूपांतरण। संत पापा फ्रांसिस ने उत्तरी आयरलैंड के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जॉन ह्यूम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए गहन सहानुभूति का प्रदर्शन किया है। 83 वर्षीय राजनीतिज्ञ जॉन ह्यूम का निधन 3 अगस्त को हो गया था। राजनीतिज्ञ जॉन ह्यूम को उत्तरी आयरलैंड की शांति प्रक्रिया के वास्तुकारों में से एक माना जाता है। डेविड ट्रिम्बल के साथ श्री जॉन ह्यूम को सन 1998 में उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक लंबी बीमारी के बाद लंदन डेरी के एक नर्सिंग होम में सोमवार को 83 वर्षीय राजनीतिज्ञ जॉन ह्यूम का निधन हो गया था। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने संत पापा फ्रांसिस की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर एक शोक संदेश भेजा। कार्डिनल पारोलिन ने लिखा, संत पापा फ्रांसिस श्री जॉन ह्यूम की मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हुए हैं तथा उनके परिवार और समस्त शोकाकुल लोगों को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हैं। कार्डिनल पारोलिन ने लिखा, उत्तरी आयरलैंड के लोगों के बीच संवाद, मेल मिलाप और शांति को बढ़ावा देने के लिए जॉन ह्यूम के अथक प्रयासों को प्रेरित करने वाले ख्रिस्तीय विश्वास के प्रति जागरूक रहते हुए संत पापा फ्रांसिस इस महान आत्मा की चिर शांति की मंगल याचना करते तथा उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रेममयी दया के सिपुर्द करते हैं। संत पापा फ्रांसिस का शोक संदेश बुधवार को डेरी के संत यूजीन महागिरजाघर में जॉन ह्यूम के अंत्येष्टि याग के अवसर पर पढ़ा गया था। राष्ट्रीय टेलीविजन पर अंत्येष्टि धर्म विधि का सीधा प्रसारण किया गया था। यूरोपीय संघ के कैथोलिक धर्माध्यक्षों की ओर से लेबनान के बैरूत में हुए विस्फोटों पर गहन दुख व्यक्त करते हुए कार्डिनल जां क्लाउड हॉलरिश ने कहा, मैं लेबनान की राजधानी बैरूत के बंदरगाह में मंगलवार 4 अगस्त 2020 को हुए भयावह और घातक विस्फोटों से लोगों को लगे सदमे और दुख को साझा करता हूं। कार्डिनल हॉलरिश ने लिखा, यूरोपीय संघ के कैथोलिक धर्माध्यक्षों की ओर से मैं पीड़ितों के परिवारों और उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों, मित्रों, पड़ोसियों और सहयोगियों को खो दिया है। हम मृतकों की आत्माओं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा, कैथोलिक कलीसिया और यूरोपीय संघ लेबनान के लोगों सहित उन अनगिनत शरणार्थियों के साथ हैं जिन्होंने हिंसा से बचने के लिए लेबनान में शरण ले रखी है तथा इस छोटे किंतु उदार देश द्वारा भ्रातृत्व और आतिथ्य का वरदान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के क्षेत्रों में शांति हेतु लेबनान की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों ने कहा, हम संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को साझा करते और लेबनान के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह अपने सभी सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक तत्वों के समर्पण के माध्यम से इस दुखद और दर्दनाक क्षण का सामना कर सकें। यूरोपीय संघ के अधिकारियों द्वारा लेबनान के अधिकारियों को दिए समर्थन और तत्काल मदद की धर्माध्यक्षों ने भूरी भूरी प्रशंसा की तथा यूरोपीय संघ का आह्वान किया कि वह इस ऐतिहासिक एवं त्रासदिक क्षण में लेबनान के अधिकारियों और वहां के स्थानीय धार्मिक समुदायों की हर संभव मदद करें। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।